सज्जनों, आप सबको नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ में जो वैदिक सनातन धर्म में संस्कार करते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, कितने हैं। पर बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक, आज मतलब कल स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है। स्वामी श्रद्धानंद जी इस मॉडर्न इंडिया की निर्माण में वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर, आर्य समाज के महर्षि दयानंद जी के बाद आर्य समाज को दशा दिशा देने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी थे। वो देश की आजादी की लड़ाई में भी पार्टिसिपेट करते थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जलंधर सम्मेलन के। रिलीजियसली जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आर्य समाज का चला उसको भी उन्होंने लीड किया। जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट भारत का उसमें भी वो लीडर रहे, और उन्होंने अपने इंडिविजुअल स्तर पर काफी सारे भारतवर्ष में नए नए एक्टिविटीज किया। जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद मॉडर्न इंडिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुकुल सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड वे में रिवाइव किया। आज भी हरिद्वार में जो कांगड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय है, अल्दो अभी वो एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, उसको बनाने में स्वामी श्रद्धानंद जी की गुरुकुल स्टाइल में, जैसे हजारों साल पहले जंगल में गुरु और शिष्य इकट्ठा रहते थे, हर तरह के ज्ञान को प्राप्त करते थे, उसी उद्देश्य से बनाया गया है। इसी तरह आप सबको पता है मिडिवल एज से लेकर आज तक भी भारत में लड़कियों को शिक्षा देने के लिए जिस तरह की रिलुक्टेंस रहा है, और खास करके देश आजाद होने से पहले तो स्थिति बहुत ही खराब थी, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने मोस्टली नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो गर्ल एजुकेशन का मूवमेंट चलाया, अलग अलग जगह स्कूल्स खोले। बाद में महात्मा हंसराज जी जो आर्य समाज के दूसरे पिलर हैं, उन्होंने डीएवी दयानंद आंग्लो वैदिक मूवमेंट के नाम पर, आज तो जो डीएवी मूवमेंट स्कूल मूवमेंट है वो भारत में गवर्नमेंट स्कूल के बाद सेकेंड नंबर में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो हजारों हजारों स्कूल चलाता है। पर स्वामी श्रद्धानंद जी का फोकस बेसिकली गर्ल्स एजुकेशन पर था। उनके लिए इंस्टीट्यूशंस खोलना, स्कूल्स खोलना, गुरुकुल्स खोलना और रेगुलर स्कूल्स खोलना। नंबर थ्री जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो दलित हैं, जो डाउन ट्रिडन है, जो सप्रेस्ड माने जाते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया, दलित उद्धार समिति। जो अनटचेबल्स थे, जो डाउन ट्रिडन थे, उनके लिए उन्होंने काफी काम किया और आगे के लोगों के लिए उन्होंने इंस्पिरेशन एस्टैब्लिश किया। इसी के साथ ही हिंदू धर्म में और एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर गलती से कोई दूसरे रिलीजन में चला जाता है बाय फोर्स, बाय इग्नोरेंस, जो भी कारण से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इवन आज भी आप कंजर्वेटिव पंडितों के पास जाएंगे, वो तो अपने ही लोगों को अपना भगाने के पीछे पड़े हैं, जात के नाम पर, उसके नाम पर हटाने के पीछे पड़े, दूसरों को कहां से लाएंगे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये मूवमेंट चलाया, उसका नाम रखा शुद्धि आंदोलन। जो लोग किसी ना किसी कारण से बाय फोर्स, बाय इग्नोरेंस, बाय लस्ट, जिस भी कारण से दूसरे रिलीजन में चले गए हैं, अगर वो यहां आना चाहें दोबारा, तो आर्य समाज ने ये मूवमेंट चलाया और स्वामी श्रद्धानंद जी की गाइडेंस में, नेतृत्व में, और उसका नाम था शुद्धि आंदोलन। तो बहुत सारे तरह के डायमेंशन में काम करने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी, और एट द एंड ऑफ द डे उनको जैसे कि आर्य समाज में मोस्ट ऑफ जो लीडर्स हैं, जो पहले के लीडर्स हैं, वो किसी ना किसी तरह वो मारे गए, तो स्वामी श्रद्धानंद जी को भी इसी तरह एक फैनेटिक मुस्लिम ने चांदिन चौक में गोली मार के हत्या की 23 दिसंबर 1926 को, आज 22 से कल है। तो इस अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कोई भी देश और सोसाइटी ऐसे महात्मा महापुरुषों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, और हमें इन चीजों को याद रखना, उनकी कंट्रीब्यूशन को याद रखना भी जरूरी है एज ए सिविल एंड हेल्दी सोसाइटी। इस अवसर पर हम स्वामी श्रद्धानंद जी को नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसे महात्मा समाज में हर जगह बने और हमारी भलाई के लिए काम करें। आज जो टॉपिक पर हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है संस्कार। संस्कार के दो तरह के संस्कार हिंदू ट्रेडिशन में चलता है, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना। एक तो संस्कार जिसे हम सैक्रमेंट्स कहते हैं, जो सेरेमनीज होते हैं, 16 संस्कार है, कंसेप्शन से लेकर अंत्येष्टि डेथ फ्यूनरल सर्विस तक, ये 16 संस्कार है। दूसरा संस्कार जो लॉ ऑफ कर्मा में, कर्म सिद्धांत में आप जानते हैं, कोई भी कर्म हम करते हैं उसके बैकग्राउंड में एक सबकॉन्शियस मेमोरी बनता है, वो संस्कार। आज हम वही सैक्रमेंट्स के बारे में बात करेंगे। दिव्यो सज्जनों, आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का जो व्हील है, इवन आप गैस नहीं डालते हैं तो भी अगर व्हील मूवमेंट में है, अब अपने गैस डालना बंद कर दिया तब भी वो काफी दूर तक अपने आप मूव करेगा। अब आप फोर्स नहीं कर रहे, फोर्स नहीं डाल रहे तब भी वो चलेगा। इसी तरह जो कुम्हार होता है, आजकल तो बहुत कम, नए बच्चों को कम समझ, जो पॉट बनाने वाला होता है क्ले पॉट, तो उसका एक ट्रेडिशनल व्हील होता है ये रखा हुआ, वो उससे जो पॉट्स बनाता है उसको एक शेप देता है, उसको हिलाता है और वो व्हील की तरह मूव करता है, मूव कर उसको फोर्स लगाता है अपने हाथ से, पुश करता है, फिर उसके बाद छोड़ देता है, उसके बाद वो घूमता रहता है। उसको हमेशा पुश करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने पुश किया फिर वो चलता रहेगा, चलता घंटों आप इसके यूज कर सकते हैं। लाइफ में ज्यादातर जो कुछ भी हम करते हैं वो कहीं से पुश किया हुआ होता है, और हम चाहें अनचाहें, जाने अनजाने में उसी को करते रहते हैं, इसी को कहते हैं, ये भी वन टाइप ऑफ संस्कार है। हमें पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर चाह कर भी गुस्सा को रोक नहीं पाते। और मजेदार बात है, ऐसे लाखों लोग हैं जो चाह कर भी गुस्सा कर नहीं पाते। उनकी पत्नियों का या पतियों का शिकायत है, हमारे पति बड़े ढीले ढाले हैं, इनको कुछ भी कर लो गुस्सा बड़े बोरिंग है, इनमें कोई एक्साइटमेंट में कोई गुस्सा आता ही नहीं इनको। तो बहुत लोग चाहकर गुस्सा कर नहीं पाते हैं, और बहुत सारे लोग चाहकर गुस्सा रोक नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों को कितना भी बढ़िया खाना बना के रखो, उनको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, हल्की फुल्की थोड़ी ले ली बस। बहुत सारे लोग खाना खाने से अपने आप को रोक नहीं सकते। ऐसा मत सोचिए कि जो खाना खाने में रोक नहीं सकता वो जानता नहीं कि ज्यादा खाने में क्या नुकसान है। जानकर भी रोक नहीं पाते, एक आदमी जानकर भी कर नहीं पाते, ये क्यों होता है? कहां से ये हमें, कौन मोटिवेट करता है, कौन फोर्स करता है? ये जो पहले से यही हमारा संस्कार है, जिस तरह के एक्सपीरियंस से, पुराने अनुभव एक्सपीरियंस से हमारा लाइफ बना हुआ है, वो एक्सपीरियंस खत्म हो चुका है, पर उस फोर्स का अभी भी यूज होता रहता है, उसी को हम कहते हैं संस्कार। महाभारत में एक बड़ा सुंदर इंसिडेंट आता है, बस सुंदर मतलब सीखने लायक। दुर्योधन को मोस्ट ऑफ महाभारत की लड़ाई खत्म होने को है, काफी लोग मर चुके हैं, लड़ाइयां हो रही है। कृष्ण दुर्योधन को जाकर समझाते हैं, अभी भी टाइम है, छोड़ दो, ये बुरे काम क्यों करते हो, तुम इतने पढ़े लिखे हो, बड़े ज्ञानी हो, बहुत पढ़े लिखे हो, समझदार हो, स्मार्ट हो, तुम्हें तो अब तो समझ जाना चाहिए ना, क्यों करते हो ये सब। तो दुर्योधन कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं क्या करूं, मैं जानता हूं क्या धर्म है, धर्म मतलब क्या गुड है, क्या वैल्यूज है, क्या वर्च्यूज है, क्या करना चाहिए, ये मैं जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं क्या नहीं करना चाहिए, क्या अधर्म है, क्या प्रोहिबिटेड है, क्या नहीं करना चाहिए। पर क्या करूं, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मैं कर नहीं पाता हूं, मेरे अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं आता है। और मैं जानता हूं गलत क्या है, पर अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, मैं क्या करूं। भगवान मेरे अंदर बैठा के ये सब कराते हैं, बिल्कुल वही स्टेटमेंट जैसे कि हर वो गलत आदमी या हर वो आदमी गलत करते समय कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढता है किस पर इसको ब्लेम किया जाए। मैं चोर को पूछो क्यों चोरी करते हो, क्या करें, मां बाप ने ऐसे किया, सोसाइटी ने ऐसे किया, कुछ नहीं मिला तो भगवान ने हमें ऐसे किया, आफ्टर ऑल सारा दोष तो भगवान पर ही जाता है। तो दुर्योधन ने भी वही कहा, पर जो फर्स्ट लाइन है वो हम सबके लाइफ में घटता है। हम जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए, पर हमसे होता है, हम नहीं करते, हमसे हो जाता है। हमें गुस्सा आता है, गुस्सा कोई बटन दबा के पैदा नहीं करवाता है। हमें पता है इन चीजों को नहीं करना चाहिए, पर हम वही करते हैं। हमें पता है ये करना चाहिए, पर हम नहीं कर पाते हैं। इसी को कहते हैं संस्कार। संस्कार जो पहले से हमारे अंदर है, कहां से आई, दो तीन तरह से संस्कार हमारे अंदर बनते हैं। या तो पैदा होने से पहले बच्चा अपने जन्म जन्मांतरों के सैकड़ों लाइफ का जो भी उसकी इकट्ठे किए हुए एक्सपीरियंसेस है, वही पैदा होने के साथ संस्कार के रूप में आता है, जो उसको कुछ पर्टिकुलर चीजें करने न करने करने के लिए मजबूर करता है। घर में आपके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इवन दो सिबलिंग तो छोड़िए, इवन दो ट्विंस भी हो, दोनों के नेचर में फर्क दिखता है, दोनों के चीजों के प्रति अट्रैक्शन में फर्क दिखता है, दोनों के टैलेंट में फर्क दिखता है। कहां से आया, किसी ने तो सिखाया नहीं, कहीं से कोई कंटिन्यूएशन तो जरूर है। तो वो संस्कार लेकर आते हैं। दूसरा संस्कार आने के बाद बचपन से लेकर बड़े होने तक, जिस एज तक आप बात कर रहे हैं, वहां तक मां बाप, परिवार, फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, जो उसकी सराउंडिंग रही, उन सराउंडिंग से जो उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीखा, सुना, जाना, मोस्ट ऑफ हमारा जो एक्सपीरियंसेस है वो इनडायरेक्ट कनेक्शन से आता है। किताबों से पढ़ा हुआ, मां बाप के द्वारा पढ़ाया हुआ नॉलेज बहुत कम काम आता है, क्योंकि बच्चे किताबें पढ़ के नहीं सीखते हैं, आसपास को देख के सीखते हैं। मां बाप कितना भी बोले, सच बोलो, सच बोलना चाहिए, तुमने क्यों झूठ बोला, पनिशमेंट मिलेगा, बच्चे देखते हैं मेरे मां बाप भी झूठ बोलते हैं, बस मुझे ही समझाने के लिए बोलते हैं सच बोलो, तो आगे भी जाकर वो जहां मर्जी झूठ, जहां मर्जी सच बोलेंगे। तो ये जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ में, हमने जाने अनजाने में बहुत सारा कलेक्ट किया है, ये जो पास्ट लाइफ का और अभी के लाइफ की जो कॉम्बिनेशन है, वही संस्कार हमें मजबूर करता है कुछ चीजें करने के लिए, कुछ चीजें नहीं करने के लिए। यहीं पर ये सारा बैकग्राउंड इसीलिए दिया कि यहीं पर जो हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों ने 16 संस्कारों की कल्पना की या जो भी व्यवस्था बनाई, सिस्टम बनाया, वो सिस्टम इसीलिए बनाया गया कि जो अपने पास्ट लाइफ से कंटिन्यूटी के रूप में जो बच्चे के अंदर संस्कार है या अभी जो भी सराउंडिंग में जो संस्कार ले, उसको अगर हम किसी तरह कंट्रोल कर पाए, उसको ठीक कर पाए, तो बच्चा आगे जाकर अच्छा बने। इसीलिए हम संस्कार करते हैं। ये जो संस्कार हम घर में करते हैं, विवाह भी संस्कार है, शादी है, नामकरण है। आजकल तो दो ही संस्कार लोगों को याद है, कोई बहुत ज्यादा थोड़ा वो हो, एक संस्कार होता है बच्चे का मुंडन संस्कार, किसी किसी को याद रहता है, बाकी तो शादी को और मरने पर जो होता है, ये दोनों तो जरूर कर लेते हैं। वो भी आजकल कोर्ट में ज्यादा मैरिज करने लग गए हैं। तो ये संस्कार क्या चीज है? इट्स ए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? जो संस्कार हम बच्चा पहले जन्मों से लेकर आ रहा है, उसको हम मॉडिफाई कर सकें, जो खराब संस्कार हैं उनको हम कम कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, जो अच्छे संस्कार हैं उनको हम ज्यादा बढ़ा सकें, और जो उसके कोई चीजें नहीं है हम डालना चाहते हैं, हम नए तरह से उसमें डाल सकें। तो ये जो व्यक्ति के अंदर के नेचर को बचपन से चेंज करने का, मॉडिफाई करने का जो सिस्टमेटिक प्रोसेस हमारे ऋषि मुनि ज्ञानियों ने बनाया था, जो ऑलमोस्ट आज अंत खत्म हो रहा है, तो उसी को हम संस्कार कहते हैं। चरक संहिता में इसको डिफाइन करते हैं। चरक संहिता जो आयुर्वेद या इंडियन मेडिसिनल सिस्टम का जो सबसे बड़े दो ऑथर हैं, चरक और सुश्रुत, उनमें से एक है। तो चरक संहिता में लिखते हैं, संस्कारो ही गुणांतराधानम उच्यते। बच्चे के अंदर जो गुण उसके अंदर है, जो क्वालिटीज है, उसको चेंज करना, उसमें नए तरह के क्वालिटीज डेवलप करना, इसी का नाम है संस्कार। जैसे आप देखते हैं ये बटरफ्लाई कैसे धीरे 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 ट्रांसफॉर्म होता है और एक बड़ा खूबसूरत बटरफ्लाई बन के निकलता है। बच्चे को आगे बढ़ाने की ये जो प्रोसेस है, इसी का नाम है संस्कार। मनुस्मृति में एक श्लोक कहता है, कहते जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, वेद पाठात भवेद विप्रह, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। कहते हर आदमी बाय बर्थ शूद्र होता है। शूद्र का मतलब अनक्लीन्ड है, इलिटरेट है, एनिमल है, मतलब जिसके अंदर किसी तरह का कोई सिविलिटी, कोई सेंस, कोई अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है। हर व्यक्ति पैदाइशी शूद्र है, मूर्ख है, अबोध है, इग्नोरेंट है। उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, उसको साफ करके फिर हम द्विज बनाते हैं। संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार के द्वारा ही उसके अंदर नई नई चीजें सिखा के, उसके अंदर इनकलकेट करके, फिर हम उसे द्विज, द्विज का अर्थ होता है दो जन्म वाला व्यक्ति, जिसके दो जन्म होता है। जैसे जो भी अंडे से पैदा होने वाले प्राणी हैं, उनको भी द्विज कहा जाता है। जैसे सांप है, चिड़िया है, मछली है। क्यों? क्योंकि एक तो मां के पेट से अंडा पैदा होता है, फर्स्ट बर्थ, फिर अंडे से फिर बच्चा पैदा होता है, तो दो तरी प्रोसेस से वो पैदा होते हैं। इंसानों में उन्हीं को द्विज कहा गया जो मां के पेट से पैदा होने के बाद कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ उनके अंदर, वो द्विज नहीं, वो तो शूद्र होके रह गए। जिन्होंने पढ़ा लिखा अपने आप को, जिन मां बाप ने कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोशिश की, बच्चे को, बच्चे के अंदर कुछ चीजें डाला, वही द्विज बनते हैं। आजकल द्विज के अर्थ में हम सिर्फ ब्राह्मण लेते हैं, पर धर्मशास्त्रों में द्विज का अर्थ वो कोई व्यक्ति जो संस्कारी है, ज्ञानी है, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, चीजों को समझता है। वेद पाठात भवेद विप्र। जब वो शास्त्र वगैरह का वेद आदि शास्त्रों को पढ़ता है तो वो विद्वान बनता है, और जब वो ब्रह्म को समझ जाता है, परमात्मा को, सेल्फ को रियलाइज करता है, तभी वो ब्राह्मण कहलाता है। आजकल तो हर वो शर्मा वर्मा चिकन भी चबाओ शराब भी पियो तब भी शर्मा जी ब्राह्मण है, जी चाय बेचो तब भी शर्मा जी ब्राह्मण है। अब ये बर्बादी का कारण है। अब तो हर व्यक्ति पैदाइशी शूद्र है, उसको संस्कारों के थ्रू जाना पड़ता है। सिर्फ इंसान नहीं, दुनिया में हर वो चीज जो ईश्वर ने बनाया है उसको जब हम यूज करते हैं उसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से निकाल डालना पड़ता है, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तब उसके वैल्यू एड होता है, तब वो यूजेबल होता है। आप खाना खाते ऐसा नहीं कि बाजार से गेहूं उठाया और चबा के खा गए, आप गेहूं को एक पर्टिकुलर वे में ट्रांसफॉर्म करते हैं, खाने लायक बनाते हैं। अब इसका आटा बनाते हैं, फिर इसको रोटी बनाते हैं, इसमें नमक डालते हैं, पानी डालते हैं, जो भी आप एक पूरे सिस्टम बना के उसको ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं तब खाने लायक होता है। पर ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, उस ट्रांसफॉर्म करते समय आप क्या क्या चीजें उसमें डालते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं, उससे पता चलेगा कि आगे जाकर वो हेल्दी होगा कि अनहेल्दी होगा। आप गेहूं को मैदा बना के उसमें घी तेल तल के खाएंगे वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, संस्कार है, पर बीमार पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको आटे के रूप में, होल व्हीट के रूप में यूज करते हैं, नॉर्मल रोटी करते हैं, स्वाद पर कम ध्यान देते हैं, हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का संस्कार गेहूं में डालते हैं उसी तरह का आउटपुट आपको मिलेगा। बच्चे में आप किस तरह के डालते हैं संस्कार तो उसी तरह का निकलता है। बाजार में खेत में कटन मिलता है तो आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रोसीजर में, संस्कार, इसी को हमारे शास्त्रों में कहता है। वो जो कटन को जब आप संस्कार करके उससे धागा बनाते हैं, धागे में कलर लाते हैं, फिर क्लॉथ बनाते हैं, फिर आप ड्रेस में पहनते हैं। बाकी आप कैसा ड्रेस पहनेंगे, किस टाइप की संस्कार करेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपने जिस तरह के उसमें मॉडिफिकेशंस किया है अब उसी तरह के कपड़े पहनेंगे। अच्छा है बुरा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोने के पत्थर से तो ज्वेलरी नहीं बनती है ना, आप उसको प्रॉपर ट्रांसफॉर्म कर, इसी को कहते हैं संस्कार करना। जो सब्जी लाते हैं बाजार से, काट छांट करके हर सब्जी के लिए अलग अलग टाइप की तरीके से काटते हैं, मसाले की मेजरमेंट करते हैं, प्रोपोर्शन फिक्स करते हैं, वो हर संस्कार के हिसाब से आपकी वो सेम सब्जी पर अलग अलग टेस्ट देता है। बच्चे वही होंगे, 10 बच्चों को हर बच्चे को आप अलग अलग तरह से संस्कार दीजिए, वैल्यूज दीजिए, वर्च्यू दीजिए, बड़ा होकर के वो अलग अलग वैल्यू वाले बनेंगे। दुनिया का हर चीज उसमें वैल्यू एड किया जाता है, वो जो वैल्यू एड का नाम है संस्कार। जो संस्कार हमारे जनरली हम बच्चों के साथ करते हैं उसमें तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। आयुर्वेद में कहते हैं संस्कार तीनों चीजों से जुड़ा हुआ है, दोषापनयनम, हीनांग पूर्ति ही, गुणाधानम। बच्चे पैदा होने के बाद उसके अंदर जो खराब क्वालिटीज हैं, खराब नेचर हैं, उनको ठीक करना, और जो कहीं कोई डेफिशिएंसी है उसको फील करना, और नए अच्छे वैल्यूज उसके अंदर ऐड करना, ये तीनों का कंबाइंड का नाम होता है संस्कार। जो हम संस्कार करते हैं, जो 16 संस्कार की बात हम करते हैं, बच्चे की गर्भाधान मतलब कंसेप्शन से लेकर डेथ तक, ये हर एक को सेलिब्रेट करने का नाम संस्कार है। तो संस्कार तो ठीक है, आपने कहा अच्छी चीजें बच्चों को सिखाओ करो, यही संस्कार है। फिर ये सेलिब्रेशन का क्या मतलब है, कि घर में कोई पूजा हो, एक प्रॉपर प्रोसीजर से जाए, मंत्र पाठ हो, इसकी क्या जरूरत है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि संस्कार का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं होता। जो वो संस्कार जब सेलिब्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, बच्चे के अंदर अच्छी वैल्यूज देना, खराब वैल्यूज को मिनिमाइज करने के प्रोसीजर को जब आप एक सेलिब्रेटेड वे में करते हैं, वो आपके संस्कार बन जाते हैं, वो एक दूसरे टाइप का संस्कार बनता है, फेस्टिवल बन जाता है। आप चाहते तो आपके बेटे की या बेटी की शादी चुपचाप अपने घर में बुला लिया, दोनों फैमिली बैठ गए, भाई चलो हाथ मिलाओ, शादी हो गई। बहुत सारे ट्राइबल सेक्ट में और बहुत सारे जगह होता है, दो मिनट से ज्यादा शादी क्या है, हाथ मिलाओ, जो तुम मुझे पसंद करते हो, जी हाँ मैं तुम्हें शादी करूँ, हाँ हो गई शादी, भी जाओ, ज्यादा करने की क्या जरूरत है। क्यों आप तामझाम करते हैं, उसके पीछे रीजन है, मतलब बहुत बड़ा तामझाम के पीछे कोई रीजन नहीं है, जो पूरे फेस्टिविटी मोड में जाने के पीछे कारण है। दो चार कारण है संस्कार, क्यों हम सेलिब्रेट, संस्कारों का दूसरा नाम सेलिब्रेशन या सेरेमनी क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चे के अंदर ह्यूमन क्वालिटी को नहीं बढ़ाते हैं, या सिर्फ जो एनिमल नेचर है उसको निकालते नहीं है, अपितु बच्चे की लाइफ में जो अलग अलग स्टेजेस आते हैं, उन हर वो स्टेज को सेलिब्रेट भी किया जाता है। बच्चा पैदा होता है तो सेलिब्रेट, पहली बार कुछ भी व्यक्ति के जीवन में होता है सबको सेलिब्रेट करते हैं, पैदा होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसमें जो जो माँ बाप को ध्यान रखना है वो भी करना होता है, बस सेलिब्रेशन भी होता है। बच्चे को पहली बार आप नाम देते हैं तो नामकरण संस्कार होता है, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलेगा, निष्क्रमण संस्कार होता है, उसको भी सेलिब्रेशन करके हम मनाते हैं। बच्चा पहली बार सॉलिड फूड खाएगा, उसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं। हर चीज जो बच्चे व्यक्ति के लाइफ में पहली बार होता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ये भी वो सैक्रमेंट या संस्कार का एक पार्ट होता है। सो दीज ऑल द सेरेमनीज आर इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फैमिली पेरेंट्स जब भी सेलिब्रेशन करते हैं, वो बच्चों को, बच्चे को फील कराते हैं उसकी लाइफ में जो जो स्टेजेस आते रहते हैं, और ये एक्नोलेजमेंट करते हैं कि बच्चे के लाइफ में कहां कहां, हर चीज को जस्ट पास बाय करके नहीं जाना, बच्चे को बचपन से पहले से ही ये फील भी कराना, और पेरेंट्स खुद उसको एंजॉय करें, एक्नोलेज करें कि हम पेरेंट्स बने हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बार 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 रिफ्रेश करें, रिमाइंड करते रहें, और उस बच्चे को ये फीलिंग हो किया जाता, कराया जाता है कि वो कितना स्पेशियल है उस फैमिली में या परिवार में। क्योंकि जब भी आप किसी बच्चे का कोई संस्कार कराते हैं, वो पर्टिकुलर डे उसी का होता है, उसी के लिए होता है, उसको जो एक्सक्लूसिवनेस उसको फील कराया जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, फैमिली के पार्ट के रूप में वो फील करता है, तो गुड फीलिंग होता है, और साइकोलॉजिकली वो बूस्टेड होता है। और नंबर थ्री, सोशल एस्पेक्ट होता है हर संस्कार का। सिर्फ बच्चा नहीं, वो बच्चे के हर वो अलग अलग स्टेज को सेलिब्रेट करने के माध्यम से फैमिली के मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स जो अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, मौका मिलता है फैमिली गेट टुगेदर का। कब आपके घर में सारे फैमिली इकट्ठा होते हैं? जब आप कोई सेलिब्रेशन करते हैं। और वो सेलिब्रेशन आप जितना ज्यादा जितने बार करेंगे उतने आपके फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होंगे। आजकल आप एक दो करते हैं तो सिर्फ शादी में इकट्ठा होते हैं या मौत में इकट्ठा होते हैं। कभी कभी एक्सटेंडेड फैमिली मिलते हैं तो 10-15 साल लग जाता है, क्योंकि सेलिब्रेशन हम कम कर दिया। अब करते हैं पर ऐसा सेलिब्रेशन जहां सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। वो पार्टी होती है क्लब में, उसमें दारू चलती है और बहुत कुछ चलता है, फिर वो सबको नहीं इकट्ठा कर सकते ना। वो सेलिब्रेशन तो हम बंद नहीं करते पर हमारा तरीका बदल जाता है। उससे क्या होता है, न केवल बच्चा हेल्दी होता है मेंटली फिजिकली, न केवल बच्चा फैमिली से अफेक्टेड होता है, अपितु सोशियली फैमिली वाइज पूरे के पूरे फैमिली भी, फैमिली रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होता है। बच्चा भी सिर्फ मैं और मेरे माँ बाप, मैं और मेरे माँ बाप से बाहर उठ करके उसको पता लगता है दुनिया कितनी बड़ी है, और मेरे चाचा है, चाची है, मामा है, फूफा है, भाई है, रिश्ता है, उन सब के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है, एक सोशल एनिमल के रूप में डेवलप होता है, न कि आजकल के माइक्रो फैमिली में मैं, मेरी मम्मी, मेरी डैड और कोई नहीं, बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वैसे तो हमारे धर्मशास्त्रों में अलग अलग तरह के संस्कारों का, कहीं 40 संस्कार हैं, कहीं 26 हैं, कहीं 20 है, ओवरऑल जो एक सबके द्वारा मान्य संस्कार है वो 16 संस्कार, इसको षोडश संस्कार कहते हैं। षोडश संस्कार का हम आज एक संस्कार कवर करने की कोशिश करेंगे, उसको हम, ये जो 16 संस्कार है, 16 सैक्रमेंट्स है हिंदू धर्म में, हम चाहें तो उसको तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, प्रीनेटल सेरेमनीज, बच्चा पैदा होने से पहले की जो सेरेमनीज है, तीन सेरेमनीज है जो बच्चा पैदा होने से पहले किए जाते हैं। दूसरा है आफ्टर बर्थ सेरेमनी, बच्चा पैदा होने के बाद जो सेरेमनीज किए जाते हैं। फिर तीसरा टाइप की सेरेमनी है जो एजुकेशनल सेरेमनीज होते हैं, बच्चा जब स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन होता है, उसको भी सेलिब्रेट करने का। और फोर्थ सेलिब्रेशन है जो लाइफ में आप फिर कुछ अचीव करते हैं, जैसे शादी होती है, आप किस अलग अलग लाइफ के स्टेजेस बदलते हैं, वानप्रस्थ रिटायर्ड लाइफ में जाते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, संन्यास आश्रम में जाते हैं, और लास्ट जो होता है वो अंत्येष्टि होता है, डेथ एनिवर्सरी है। तो थोड़ा वो समझने के लिए एक हम जो भी टाइम के बीच में एक प्रीनेटल सेरेमनी का एक सेरेमनी आज हम इंक्लूड करते हैं, बाकी नेक्स्ट संडे को हम करेंगे। जब भी माँ बाप या जो यंग पेरेंट्स या कोई भी कपल ये सोचता है कि मेरे पास हमारा एक बच्चा हो, तो बच्चा कोई आलू प्याज चिप्स या कोल्ड ड्रिंक तो है नहीं कि बाजार में जाकर ले आओ। इवन आप कोई चीज घर में लाते हैं, इवन आप ये गाड़ी खरीदते हैं या आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आपको पता लगता है गेस्ट आने वाला है तो आप उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, खाना भी प्रिपेयर करते हैं, घर साफ करते हैं, सब कुछ ठीक रखते हैं कि जो आए वो गुड फील करे। और आपके घर में आप एक दिव्य डिवाइन सोल को अपने घर में बुला रहे हैं अपने बच्चे के रूप में, उसकी तैयारियां होनी जरूरी है। तैयारियां हम करते हैं पर मोस्टली मैटेरियल तैयारी है, इसका रूम ये होगा, खिलौने, हजारों खिलौने लगा देते हैं, पैसा जो कुछ पैसे से मिलता है वही तैयारियां करते हैं। पर हमारे शास्त्र, वो पैसे की तैयारी तो आपकी मर्जी है, कहते नहीं, आप मेंटली फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करो कि एक बच्चा आपके थ्रू आपके घर में एक आत्मा प्रवेश करे आपके बच्चा बनके। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में एक बड़ा हेल्दी बच्चा हो, टैलेंटेड हो, सुंदर हो, तो फिर आपको उसी हिसाब से प्रिपेरेशन करने की जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने बैकयार्ड में कोई प्लांट्स उगाना चाहते हैं। दो ऑप्शन है, आपको अपनी गार्डन तैयार करना है, थोड़ा बहुत खोद खाद दिया, मिट्टी बीज डाल दिया, बस हो गया, जब मर्जी पानी डाल देते हैं, जब याद आया स्प्रिंकल कर दिया, बस हो गया, वो भी प्लांट बनेंगे, कितने बनेंगे, कितने मर जाएंगे, बच्चे बनेंगे तो कैसे बनेंगे, बाजार में तो लोग तो फुटपाथ पर भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, पलवर जाते हैं। दूसरा है कि आप पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, किस तरह की सॉयल होगा उसको टेस्ट करते हैं, क्या क्या सॉयल अगर चेंज करना है तो सॉयल चेंज करते हैं, क्या क्या फर्टिलाइजर डालना है, सीड किस तरह का हो, मैन्योर कैसे डालें, कितना वाटर डालें, कम डालें, ज्यादा डालें, कितने दिन डालें, एयर का कितना स्पेस हो, सारी चीजें आप पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं गार्डन को, फिर आप उसमें बीज डालते हैं और पूरे प्रोसीजर से करते हैं, फिर आपको पता लगता है क्या हरे भरे गार्डन है, छोटे छोटे पेड़ में फल लदे हुए हैं, मजे लेते हैं आप। बच्चे का यही तरीका होता है, आप प्रिपेयर करते हैं, मां बाप उसके लिए जब जो भी रिक्वायर्ड प्रिपेरेशन है करते हैं, फिर गर्भाधान करते हैं, तब जा करके होता है। क्या प्रिपेरेशन है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं, वैदिक शास्त्र कहते हैं, अगर आप चाहते हो कोई स्ट्रांग ब्यूटीफुल इंटेलेक्चुअल अपब्रिंग आपके घर में आए, तो आप अपने आप को उस तरह से तैयारी करो, मन को शांत रखो जब भी संतान पैदा करने की इच्छा हो, खाना पीना हेल्दी रखो, प्योर बनाओ, अच्छे शास्त्रों को, वो प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं जो जिसे आप पैसा कमाते हैं, नहीं, अच्छे विचार वाले किताबें पढ़ो, पॉजिटिव सेंस वाले बुक्स पढ़ो, खुद के बारे में कुछ जानो, अच्छे लोगों के साथ बैठो उठो जहां गॉसिप ना हो, बैक बीचिंग ना हो, नेगेटिव बातें ना हो, पॉजिटिव माहौल रखो अपने माइंड में, एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करो कुछ दिन के लिए, कंटेम्पलेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी चीज तो बहुत सारी चीजें डॉक्टर भी आपको आजकल बता देते हैं। जब आप प्रॉपर प्रिपेरेशन के साथ बच्चे आने की तैयारी कंसेप्शन करते हैं, डेफिनेटली वो बच्चा एक हेल्दी मेंटली या फिजिकली हेल्दी बच्चा होगा। इसी के लिए गर्भाधान संस्कार करते हैं, मां कपल्स प्लानिंग करते हैं हमारे घर में बच्चा हो, फिर उस दिन अपना घर में हवन पूजा पाठ जो भी रिलीजियस रिचुअल के साथ, फिर वो प्लान करते हैं कि आगे से हम इसी तरह लाइफस्टाइल जिएंगे और संतान उत्पत्ति, इसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। बच्चा जब मां के गर्भ में 3 महीने करीब हो जाता है, एक संस्कार होता है, उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार, सेरेमनी ऑफ फेटस प्रोटेक्शन। जो गर्भ में जो छोटा बच्चे का जो शुरुआत हुआ उसको प्रोटेक्ट करने के, वो भी सेलिब्रेट होता है। ये सब चीजें सेलिब्रेशन होते हैं और रिलीजियसली, रिलीजियसली क्यों, जैसे मैंने कहा कोई भी चीज आप सेलिब्रेट करते हो, फैमिली फ्रेंड सबको बुलाते हो, रिलीजियस कब बनता है आपका सेलिब्रेशन पता है? जिस फेस्टिवल में सेलिब्रेशन में एक फैमिली मेंबर को आप एक्सक्लूड कर देते हो वो सेक्युलर सेलिब्रेशन होता है, और जब आप उस फैमिली मेंबर को इंक्लूड कर देते हो वो रिलीजियस होता है। वो फैमिली मेंबर है परमात्मा ईश्वर भगवान जो आपके साथ है, हमेशा है, आपके घर है, आपके अंदर है, सब कुछ है। जब आप इसको साथ जोड़ के सेलिब्रेट करते हो वो रिलीजियस हो जाता है, जब उसको हटा देते हो तो वो सेक्युलर सेलिब्रेशन होता है। परमात्मा मानते तो हो, नहीं मानते तो अलग बात है, अगर ईश्वर को मानते हो साथ लेकर चलो, उसको भी सेलिब्रेशन के पार्ट बनाओ, फिर देखना तुम्हारे जीवन में घर में कैसे बदलाव आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ईश्वर तुम्हें क्या देने वाला, ये बात नहीं, तुम्हारे खुद के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं तुम देखोगे। तो पुंसवन संस्कार प्रेगनेंसी के 3rd मंथ में जनरली किया जाता है, और जनरली ये सेलिब्रेशन है कि बच्चा जो फेटस है वो प्रॉपर डेवलप करे। डेवलप करने के लिए जो जो चीजें ध्यान रखना है, सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, उस सेलिब्रेशन के माध्यम से मां बाप को क्या ध्यान रखना है वो बताया जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहते हैं 3rd अध्याय के 79 श्लोक में कहते हैं कि पति को चाहिए या पति के घर वाले जो भी उनके साथ हो चाहिए कि पत्नी जब प्रेग्नेंट हो उसको पूरी कोशिश करे उसको खुश रखने की, उसके मन में किसी तरह की नेगेटिविटी ना हो, किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, किसी तरह के मन में खराब भाव ना हो, खाना पीना, और इस समय उनके अंदर बहुत इच्छा है। इवन वो शास्त्र हमारे कहते हैं उनको अगर ज्वेलरी पहनने की मन करे तो वो, क्योंकि स्त्रियों के अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, वो सुंदर बनने के लिए अच्छे कपड़े पहनना चाहें, अच्छे आभूषण ज्वेलरी पहनना चाहें, ये पति का ड्यूटी है कि ये उनको अच्छे अच्छे ज्वेलरी दें, पहनाए अच्छे कपड़े दें, वो खुश रहें, इसके लिए कोशिश करें। इसी तरह पत्नी का भी धर्म है कि वो अपने खान पान रहन सहन विचार को शुद्ध बनाने की कोशिश करे। ये उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो फिजिकली मेंटली जो कुछ भी कर रहा है उसका वो अंदर के बच्चे के साथ सब शेयर हो रहा है, क्योंकि एक ही कनेक्शन है, एक ही नर्व सिस्टम है, सब कुछ एक ही है, सब कुछ जैसे तुम्हारे बॉडी में जाता है वो सब कुछ उस बच्चे में भी जाता है। वो बहुत ज्यादा ओवर एग्जॉस्टेड ना हो, बहुत दूर तक ट्रैवल ना करे, और बहुत सारे रूल्स हैं। ईश्वर की भक्ति करे, इसी दिन इन दिनों ईश्वर की भक्ति करे। जो साधु संत अच्छे विचार के लोग हैं उनको सम्मान करें, और काफी बड़ी लंबी लिस्ट है। ये चरक संहिता का है जो आयुर्वेद में है, मैं इसको संक्षेप में पढ़ दूं, टाइम हो रहा है। तो कहता है, शी शुड अब्सटेन फ्रॉम टचिंग सॉइल, डिस्टॉर्टेड और इन्फीरियर ऑर्गेन्स। शी शुड स्टे अवे फ्रॉम स्टिंकिंग प्लेसेस एंड अनप्लीजेंट साइट्स। शी शुड अवॉइड लिसनिंग टू थिंग्स दैट कॉज अनइजीनेस और रेस्टलेसनेस। शी शुड नॉट पार्टेक ऑफ ड्राई स्टेल रॉटन फूड। मतलब कोई बासी खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए, कोई गंदा खाना नहीं खाना चाहिए। शी शुड शन विजिटिंग एन अनऑक्यूपाइड हाउस। खाली जगह पर क्यों नहीं जाना चाहिए? अचानक डर आ जाता है, अचानक घबरा जाता है और ये नुकसान करता है। क्रिमेशन ग्राउंड्स, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं जाना चाहिए। स्टेइंग अंडर ए ट्री, गेटिंग क्रॉस और सल्किंग, बींग अनटावर्ड, येलिंग एटसेट्रा, इसे अवॉइड करना चाहिए। शी शुड अवॉइड ऑल दोज थिंग दैट कुड हार्म हर होम एंड इट्स एक्यूपमेंट। और शी शुड नॉट यूज एनी इंटॉक्सिकेंट, शुड नॉट क्लाइम फॉर ए राइड, शुड नॉट ईट मीट, अबेंडन द थिंग्स विच द सेंसेस आर नॉट डिजायरस ऑफ एंड कंप्लाई विथ लर्नड ओमेन ऑफ नेबरहुड और फैमिली। ओमेन मेन दोनों आप ले लीजिए। ऐसे लोगों के साथ मिले बैठे उठें जो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में, माइंड में अच्छी चीजें, नॉलेजेबल बातें चलता रहे। और ऑल दैट इज, जो कुछ भी आपको आगे पिछले बताया गया, मां को ये सब वो पुंसवन संस्कार के से उसको ये पुंसवन संस्कार जब घर में होता है उसके बाद उसको ये सब फॉलो करने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल जीने के लिए करता है। सो कीपिंग इन माइंड द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग, इट इज देयरफॉर द मदर्स ड्यूटी टू रेगुलेट हर ईटिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स। टाइम पर खाना, हेल्दी खाना, अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करना, लाइफस्टाइल को टाइम पर सोना, ये भी बहुत जरूरी है। ये सब बच्चे को इंपैक्ट करता है। अगले बार हम चर्चा करेंगे प्रीनेटल सेरेमनी का और एक सीमंतोन्नयन। जनरली वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सीमंतोन्नयन जो सेलिब्रेशन करते हैं बेबी शावरिंग के रूप में करते हैं। फिर हम नेक्स्ट संडे को सीमंतोन्नयन के बाद फिर आफ्टर बर्थ सेरेमनी और बहुत सारे 16 संस्कारों की चर्चा करेंगे। आपको इसी बहाने आपको अगले संडे आने को भी निमंत्रण है। जो लोग आज पहली बार आए हैं जरूर आइए। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति शांति।